गंगा माय की जय, यमुना माय की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, श्री श्री राधा गिरिधरी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुबोध महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, दामोदर भगवान की जय, कार्तिक महीना की जय, कार्तिक पद महामहोत्सव की जय, गंतराज श्रीमद भागवतम की जय, जय निधाय गौर प्रेमानंदे हरि 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 वो श्रील प्रभुपाद की जय, गंतराज श्रीमद भागवतम की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरहे। नष्ट प्रायेषु अवद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद सातवां अध्याय श्लोक संख्या 5। नंदस्य पत्नी प्रीतमज्जना वादिकं विप्रै प्रीता शस्त अयम् सुपूजितो अन्न आद्य बाशा शकविष्टा धेनुभि सज्जाता निद्रा अक्षमा अशीशया। नंदस्य पत्नी कितमज्जनवादिका नंदस्य पत्नी कितमज्जनवादिका विप्रैकित शस्तयम् सुपूजितो यन्नो आद्यवासः शक्लोभीष्ट धेनुभिः यन्नो आद्यवासः शक्लोभीष्ट धेनुभिः सज्जात निद्राक्षमाशीषय। नंदस्य पत्नी कितमज्जनवादिका नंदस्य पत्नी कितमज्जनवादिका विप्रैकितशस्तयम् सुपूजितो अन्नो अत्वाशो श्रकोविष्ट धेनुभि सज्जात निद्राक्षमाशीषया। नंदस्य नंद महाराज की पत्नी पत्नी यशोदा कीतमज्जन आदिकम जब ओ तथा घर के उन्नो लोग नहा चुके और बालक को भी नहला दिया विप्रई ब्राह्मणों के द्वारा कीतो शस्तयम शुभ वैदिक मंत्रों के पाठ करने में लगाकर सुपूजितो जिनका ठीक से स्वागत तथा पूजन किया गया अन्य आद्य उन्होंने
पर्याप्त अनाज तथा अन्य भोज्य वस्तुओं को देकर बाश वस्त्र शक अभिष्ट धेनु भी फूलों की मलाए तथा उपयुक्त गोईवो भेंट करके सज्जात निद्रा उन्हें दी अक्षम आंखे अशीशयत बच्चा के लिटा दिया शनै उस समय शिल्पोपाद जी तरह अनुवाद तथा तत्पर शिल्पोपाद की जय। बच्चे के शान उत्साह पूरा करने के बाद माता जसोदा ने ब्राह्मण से प्रचुर अन्न तथा अन्य भोज्य पदार्थ वस्त्र वांछित गेवे तथा मलाई भेंट करके उनके उचित सम्मान के साथ पूजा की और उनका स्वागत किया। ब्राह्मणों ने इस शुभ उत्सव पर उचित रीति से वैदिक मंत्र पढ़े। जब मंत्रोच्चार का समाप्त हुआ और माता जसोदा ने देखा कि बालक उनीदा है उनीदा हो रहा है तो वो उसे लेकर बिस्तर पर तब तक लेटी रही जब तक वो शांति से सो नहीं पाया। शिलोपोपाद जी द्वारा तात्पर्य स्नेहमयी माता अपने बच्चे के काफ़ी परवाह करती है और वो देखती रहती है कि उसका बच्चा क्षण भर भी विचलित ना हो। बच्चा जब माता को पास रहता चाहता है माता उसके पास रहती है और बच्चा आपने के काफ़ी आराम देह अनुभव करता है। माता जसोदा ने देखा कि उनके बच्चा उन्नीदा हो रहे हैं तो उसे सोने के पूरी सुविधाएं देने के लिए वो स्वयं बालक के साथ लेट गई और जब वो शांत हो गए तो वो उठकर घर की के दूसरे कामकाज करने लगी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति शापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीजितपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं शब्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणो ललिता सिद्धिशाखान्वितांश्च नमयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चत्वदेशकारिणे वंशाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरुतिशे नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशोभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं कृतिवाचलं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
हरे कृष्ण। जिस अध्याय का चर्चा हो रही है तीन आवर्त बाद श्लोक में तात्पर्य में रूपा जी वर्णन की माता तथा अपने बच्चा का किस तरीके से संबंध होना चाहिए। इसके पहले कल का श्लोक में हम लोग तर्जबद्ध में अध्ययन की थी कि श्री गोपा जी तात्पर्य में लिखा है कि माता तथा उनका पुत्र ये दोनों में किस तरीके से संबंध आगे बढ़ना चाहिए। माता जब एकदम गर्भावस्था में रहते हैं तब से उनका जीवन में आनंद ही आनंद रहते हैं। जैसा गोपा जी तात्पर्य में विश्लेषण किए कि गर्भावस्था में तीन महीना तथा सात महीने जब गर्भावस्था चलती रहती है उसी समय माता दूसरे परिवार को बच्चे के साथ एक साथ बैठ के खाना खाती है जिसको कहते हैं कि स्वाद भक्षण। और जब माता गर्भवती हो जाती है तो पूरा परिवार में आनंद ही आनंद बहलाती रहती है। लेकिन आज का दुनिया में सबसे बड़ा दुख की बात यही होती है कि गर्भधारण गर्भ संस्कार गर्भाधान संस्कार के आनंद का वस्तु होता है। श्री गोपाल जी ने वर्णन भी किए कि गर्भधारण जो है एक चिन्मय आनंद को प्राप्त कराते हैं। वैदिक सभ्यता में वैदिक कल्चर में इसको कहते हैं कि चिन्मय आनंद प्राप्त करना गर्भधारण। क्यों ना वैदिक हिसाब से कोई अगर गर्भधारण करे तो उनका परिवार में जो बच्चा आती है और निश्चित रूप से वैदिक शिक्षा तथा वैदिक संस्कृति को पूरे अच्छे तरीका से कब्जा कर सकते हैं। लेकिन आज का दुनिया में हाल फैसल दुनिया में बड़ा दुख की बात होती है कि कोई व्यक्ति गर्भधारण नहीं करना चाहता है, गर्भपात में ज्यादा उत्साहित रहते हैं। गर्भधारण उनके सामने एक बोझा स्वरूप मतलब एक भार स्वरूप हो जाती है। जब बच्चा गर्भ में आता है तो माता पिता का कितना आनंद रहता है कि देखो मेरा परिवार में और एक संख्या बढ़ रही है, तो इसके लिए आनंद ही आनंद होता है। जय श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो गर्भधारण एक आनंद का वस्तु होता है। ओपा जी इसमें वर्णन भी किए कि गर्भधारण जो है गर्भधारण संस्कार जो 10 महीना 10 दिन अपना गर्भ में बच्चा को धारण करना एक आनंददायक है, एक चिन्मय आनंद प्राप्त होता है। इसमें माता खुश रहती है, इसमें जो मेरा गर्भ में एक कोई आ रहा है साथ में जिसके कारण पूरा परिवार में आनंदम बुद्धि वर्धनम आनंद बढ़ाते रहते हैं। लेकिन समाज का हिसाब से आज का दिन में समाज इतना कुलुषित हो गए कि गर्भधारण माता का सामने परिवार का सामने एक बोझा स्वरूप हो गए, एक बार्डेन हो गए, जिसके लिए गर्भधारण को कोई स्वीकार करना नहीं चाहते। कहते कि गर्भपात होना चाहिए कि लेकिन गर्भपात कितने पाप होती है ये कि एक जो बच्चा अपना गर्भ में धारण करने के लिए आए उसको 1 महीना 2 महीने जब गर्भ में है बाद में जाकर नर्सिंग होम में जाकर उसको गर्भपात करना सबसे बड़ा पाप की कारण होता है। देश विदेश में एक गर्भपात को सबसे ज्यादा चर्चा आज चल रही है। सरकार हमारा इसमें मदद भी देती है कि गर्भपात एक आईन ही है, एक लॉ एंड ऑर्डर इसको कहते हैं, जिसके लिए पाप कर्म आगे बढ़ रही है, एक से एक पाप कर्म होते रहते हैं क्योंकि सरकार बना दी एक नियम, एक रूल्स एक रेगुलेशंस बनाए। द गवर्नमेंट द मेड वन रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट द गर्भपात जो है एक आईनी है, मतलब एक रूल्स लॉ एंड ऑर्डर है इसका, जिसके कारण एक से एक पाप कर्म में हम लोग लिप्त हो जाते हैं। कुछ दिन पहले एक डॉक्टर का मैंने एक प्रवचन सुन रहा था जिन्होंने उसमें बताया कि गर्भपात को सरकार ने इतनी मदद दे रही है जिसके कारण इस गर्भपात को आगे बढ़ाने के लिए एक से एक अली गली में नर्सिंग होम का परमिशन मिलता है। माता को पता होगी कि गर्भपात किस तरीके से पाप कर्म होती है, इसमें कि एक पाप कर्म के द्वारा दूसरे को आप प्रलुब्ध कर दे तो कि आप इस पाप कर्म में लिप्त हो जाओ। तो वैदिक शिक्षा में, वैदिक संस्कृति में, वैदिक कल्चर में इस तरीके से व्यवहार नहीं था। इसलिए पोपा जिसमें वर्णन भी किया है तात्पर्य में कि सात महीना तथा तीसरा महीना में गर्भवती महिला का साध भक्षण होता है। इस साध भक्षण का बहुत ही सुंदर तत्पर्य जो है, जिसमें भक्तिविनोद ठाकुर भी लिखे साध भक्षण का अर्थ क्या होता है, किसके लिए साध भक्षण होता है। गर्भवती महिला दूसरे महिला को बच्चा को लेकर एक साथ बैठकर खाना खाना पड़ता है, उसको को कहते हैं कि साध भक्षण। तीसरा महीना तथा सातवां महीना में ये कार्यक्रम होता था। ये वैदिक संस्कृति है, ये वैदिक संस्कृति में इसी तरीके से लिखा भी है शास्त्रों में कि साध भक्षण कराने में क्या होती है। प्रभुपाद जिसमें वर्णन भी किए कि साध भक्षण का कारण माता जिसका गर्भ में संतान है, वो संतान एक तरीके से डॉक्टरी हिसाब से हिष्ट पुष्ट रहती है कि माता अगर अच्छे तरीके से खाए तो उसी खाने का जो फल जो प्रोडक्ट वो मिल जाती है बच्चे को। दूसरा जो वैदिक संस्कृति जिसको कहते हैं कि वैदिक संस्कृति में क्या होता है कि दूसरे मतलब विधि है इसी तरीके से कि साध भक्षण का दिन नहीं तो दूसरे तीन बच्चा नहीं तो सात बच्चा नहीं तो ग्यारह बच्चा को लेकर एक साथ बैठा कर सब बच्चे को खिलाने के बाद जितने सदवा मतलब जो शादी शुदे वाले महिला वो गर्भवती महिला को खिलाती है। इसका अर्थ होता है कि गर्भवती महिला को जितने बच्चा को साथ एक साथ खाए उसके जितने सारे अच्छे तरीके से गुण है उसी गुण को वो आने वाले बच्चे को ऊपर प्रभावित हो जाते हैं। इसके लिए कहते हैं कि साध भक्षण। आजकल तो ये सब वैदिक संस्कार ये सब भूल गए। आजकल आजकल सीधा नर्सिंग होम से सीधा बच्चे हो गए तो माता और बच्चे को सीधा आकर बेडरूम, वैदिक संस्कृति है ही नहीं। जिसके लिए बच्चा कभी कभी क्या होता है, बच्चा हो जाने के बाद भी जो वैदिक संस्कृति जो हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण बच्चा कभी बड़ा जो हो जाता है एक आंख बंद हो जाता है उसका, कभी एक हाथ टेढ़ा हो जाता है, कभी पैर टेढ़ा हो जाते हैं। प्रभुपाद जी इसमें वर्णन किए, आगे चलते तत्पर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रभुपाद जी वर्णन के गए इसका कारण नहीं है कि बच्चे जब एक आंख बंद हो गए, कहीं अंधा हो गए, एक हाथ टेढ़ा हो गए, किसी के एक पैर टेढ़ा हो गए, कोई बच्चा आजकल सात महीना में भी गर्भपात हो जाते हैं। प्रभुपाद जी इसमें वर्णन किए कि सात महीना छह महीना आठ महीने में अगर बच्चा बाहर आ गए मतलब निश्चित रूप से सोच लेना कि उनका कुछ बैड कर्म मतलब कर्म फल के कारण बच्चा बाहर आ गए। इसका बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में विश्लेषण भी किए कि गर्भधारण जो है एक वैदिक संस्कृति, इसी वैदिक संस्कृति के हिसाब से अगर माता गर्भधारण संस्कार को पाले, गर्भधारण हिसाब से चले तो जो आने वाले बच्चा है वो निश्चित रूप से बच्चा वैदिक संस्कार को कब्जा कर सकते हैं। लेकिन आजकल तो वो सब हिसाब है ही नहीं। आजकल हिसाब सब दूसरा हिसाब हो गए कि बच्चा को सीधा जब गर्भ जंतुना जिसको बोलता है लिवर पेन, इसमें वर्णन भी किया है कि बंधा की जाने प्रसवेर जंतुना, बंधा की जाने बंधा मतलब जिसका कोई बच्चा नहीं है, जो बच्चा पैदा नहीं कर सकते है उसको कहते हैं कि बंधा नारी। तो बंधा की जाने प्रसवेर जंतुना, जो बंधा नारी होती है जिसको बच्चा पैदा करने का क्षमता नहीं है, उसको पता नहीं है कि लेबर पेन गर्भ जंतुना किसको बोलती है। तो प्रभुपाद जी इसमें वर्णन किए कि बंधा नारी इसके लिए हो जाती है। बड़ा दुख की बात है ये, लेकिन फिर भी भागवत में प्रभुपाद जी विस्तृत रूप से इसका वर्णन किए है, जिसके लिए मेरे को बोलना भी पड़ता है कि प्रभुपाद जी वर्णन कि बंधा नारी वही हो सकता है जिसका पूर्व जीवन का बहुत सारे पाप कर्म किए जिसके कारण इसी जीवन में बंधा नारी हो गए। किसी का मन में दुख आ सकता है कि देखो वैसा सामने बढ़ के इसी तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी नित्य सिद्ध व्यक्ति, नित्य सिद्ध पुरुष जो कि हर समय भगवान के बारे सोचते रहते हैं उसको कहते हैं कि नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध करो तारे करियो गमन, तो नित्य सिद्ध व्यक्ति का मुखारविंद से इसी प्रकार शब्द निकले कि बंधा नारी वही होता है जो कि पूर्व जीवन में ऐसा कोई पाप कर्म किए थे जिस पाप कर्म का फल उनको इसी जीवन में भोगना पड़ता है जिसके कारण बंधा नारी हो गया। विवाहित जीवन का पहले जिन्होंने बहुत सारे औसत कर्म किए, विस्तृत रूप से मैं वर्णन नहीं करना चाहता हूं, विवाहित जीवन का पूर्व उन्होंने बहुत सारे असत कर्म किए जिसके कारण उसको बंधा जीवन मिले। आगे चलते 11 अध्याय में, ये दशम स्कंद का 11 अध्याय में इसका वर्णन किया है प्रभुपाद जी। और बंधा की जाने प्रसवे रजंतना, मतलब लेबर पेन जिसको बोलते हैं, माता को अच्छे तरीके से इनको पता है कि लेबर पेन किसको बोलते हैं। तो लेबर पेन में भले भी शुरुआत में माता का कष्ट मिलती है, माता रोती रहते हैं, लेकिन जब बच्चा बाहर आ जाता है ना, तो बच्चा बाहर आने के बाद जब बच्चा भूमिष्ठ होता है, जब भूमि मतलब पृथ्वी का आलो जब बच्चा पहली बार देखा तो बच्चा रोते रहती है। प्रसव होने के बाद जब बच्चा का रोने का आवाज माता का कान में पहुंच जाती है ना, तब माता का आनंद ही आनंद मिलते हैं। यह हमारा जीवन आज धन्य हो गए, आज मेरा जीवन धन्य क्योंकि मैंने 10 महीना 10 दिन अपना बच्चा का गर्भ में धारण करने के बाद जीवन में मैंने पहली बार ये बच्चा का रोने का आवाज मैंने सुन लिया हूं। तो इसको कहते कि वैदिक संस्कार। तो जशोदा माता इसी तरीका से बच्चा को लालन पालन की थी, इसी तरीका से ने बच्चा को लालन पालन की। जब बच्चा को बच्चा आए बाहर तो ब्राह्मण को बुलाए, आजकल तो ब्राह्मण नहीं मिलते, प्रभुपाद जी इसमें वर्णन भी किए हैं कि आजकल का जो ब्राह्मण है, नब्बो ब्राह्मण जिसको कहते हैं, कि नब्बो ब्राह्मण का वैल्यूएशन होता है सिर्फ 2 रुपया का। मतलब बाहर से जाओ 2 रुपया का एक जेनुई खरीद करो, गले में डाल दो तो ब्राह्मण हो गए। जिसके लिए प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावन संघ को तैयार किए, कि कल आदियों को भी बता रहे थे कि प्रभुपाद जी का लक्ष्य ये कि सही तरीके से ब्राह्मण बनाने के लिए श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मित्र संघ को तैयार किया। कलादियों को बहुत अच्छे से बताया कि ब्राह्मण बनाने का तरीका क्या होता है, ब्राह्मण का जो गुण जो नेचर जो स्वभाव किस तरीके होना चाहिए, जिसको सामने रखकर प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मित्र संघ को तैयार किया। तो आज का जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण का वैल्यू हो गए 2 रुपया का ब्राह्मण। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे भी है कि 2 रुपया में जाकर बाजार से आपने जेनुई खरीद करके लिए और गले में डाल दिए, कह दिए कि मैंने ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण उसी तरीके से नहीं होता है। जातो कुलोमान गैलो सभी, अगर कोई कोई ब्राह्मण इसी तरीके से होता है कि बाई बोर्न बाई बर्थ, मतलब मेरा पिताजी का ब्राह्मण पदवी है, उनका दादाजी का ब्राह्मण पदवी है, तो मैं उसी परिवार का हूं, मतलब मैं भी ब्राह्मण परिवार का हो गए, मैं भी ब्राह्मण हूं। प्रभुपाद जी इसमें वर्णन की कि ब्राह्मण होकर भी 2 रुपया का जेनुइन डालकर और वो जाता है दूसरा इधर उधर जगह पर और कह दिए कि मैं भी ब्राह्मण हूं, बोलते नहीं दे आर नॉट ए ब्राह्मण। तो नंद महाराज इसी तरीके से ब्राह्मण को नहीं बुलाए थे। कौन सा ब्राह्मण को बुलाए थे? सूचीशिला धर्मशिला रक्षणशिला आजी। भक्तिविनोद ठाकुर बहुत अच्छा से इसका वर्णन भी किया है कि रुचिशिला रक्षणशिला धर्मशिला आजी। सूचीशिला मतलब जिसका ब्राह्मण का क्वालिटी है, जजन जाजन पठन पाठन। रुचिशिला मतलब जिसका कल्चर है, ब्राह्मणी का कल्चर जिसको बोलते हैं, ब्राह्मण्य संस्कृति, जिसके लिए भगवान सबसे ज्यादा ब्राह्मण और गो माता को श्रद्धा करते। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जिसका ब्राह्मणी का कल्चर है, जिसके लिए नंद महाराज ने ब्राह्मण को जो सही तरीका से ब्राह्मण है, 2 रुपया का ब्राह्मण नहीं है। प्रभुपाद जी एकदम डायरेक्ट बताते कि 2 रुपया का ब्राह्मण आज समाज को कलुषित कर देते हैं। Our society became polluted by the 2 rupees Brahman. उसमें लिखा है तात्पर्य में, Our society became polluted. हमारा समाज आजकल दूषित हो गए इसी प्रकार 2 रुपया का ब्राह्मण का कार्यों के द्वारा। तीसरी पुकार 2 रुपया का ब्राह्मण को नहीं बुलाया उन्होंने। कौन सा ब्राह्मण को बुलाए? जो शुचिशिला रक्षशिला धर्मशिला। ये धर्मशिला ब्राह्मण मतलब जिसका ब्राह्मण मतलब जिसका धार्मिक कार्यकलाप का ऊपर उनका पूर्ण विश्वास है, पूर्ण श्रद्धा है, जिसका कहते कि धर्मशिला ब्राह्मण। इसी प्रकार ब्राह्मण को बुलाकर उन्होंने अपना बच्चा को आशीर्वाद प्रदान कराया। भगवान का कोई आशीर्वाद का जरूरी नहीं था, फिर भी समाज को शिक्षा देने के लिए जिनका घर में स्वयं भगवान प्रकटित हो गए उनको कोई जरूरी नहीं था ब्राह्मणों का आशीर्वाद का, फिर भी समाज को शिक्षा शिक्षा प्राप्त कराने के लिए उन्होंने किए थे ये काम। अगर इसी तरीके से लीला को अगर कोई व्यक्ति शोभन करे तो बाहर का व्यक्ति को सामने अगर जाकर इसी तरीके से लीला को अगर अपने अच्छे तरीके से वर्णन भी किए तो बाहर का व्यक्ति इसके द्वारा प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि जिनका भगवान का ऊपर पूर्ण विश्वास है, जिन्होंने भगवान का ऊपर पूर्ण श्रद्धा है, सिन्नताम सकतो कृष्णा पूर्ण श्रोवण कीर्तन, जिन्होंने भगवान का पूर्ण विश्वास कर लिए कि भगवान के द्वारा हर कार्य संभव हो सकती है, वो ये विश्वास कर सकते हैं। इसके लिए भगवान का बाल्य लीला इतना मधुर, इतना आनंददायक, और इसमें आनंद तब प्राप्त कर सकते हो जब श्रोता एवं वक्ता दोनों बोथ एट द सेम पैरेलल, मतलब दोनों अगर एक ही लाइन में है, जैसे महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी दोनों एक ही पैरेलल लाइन का था, जिसके लिए महाराज परीक्षित ने बताया कि आप जरा मेरे को बाल्य लीला का वर्णन करिए। भगवान ने अधिक से अधिक सारे लीला प्रकट किए, लेकिन सबसे श्रुति मधुर तथा आनंददायक जो लीला है वह है बाल्य लीला। तो माता जशोदा बात्सल्य प्रेम से अपने बच्चा को देखभाल कर रहे थे, जिसके लिए बात्सल्य प्रेम का कारण नंद महाराज ने सब ब्राह्मण को बुला लिए। जब ब्राह्मण आकर उनको बच्चा को अगर अच्छे तरीके से आशीर्वाद प्राप्त कराए तो बच्चा अगले जीवन में एकदम अच्छे तरीके से बच्चा बने, विद्वान बने, बुद्धिमान बने, सब कुछ बने। ये समाज को दिखाने के लिए किए थे। इसलिए विष्णु चक्रवर्ती पाद इसमें वर्णन की गई है कि ब्राह्मण को बुलाने का कारण यही था कि ब्राह्मण को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है समाज में, जिसके लिए नंद महाराज ने बुलाया। अपने बच्चा को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद वचन देने के लिए ब्राह्मण को नहीं बुलाए थे, सिर्फ समाज को दिखाना है कि ब्राह्मण का क्वालिटी क्या है एवं ब्राह्मण का व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट द सोसाइटीज। विष्णु चक्रवर्ती पाद इसमें वर्णन की कि समाज को दिखाना है, समाज को सिखाने के लिए नंद महाराज ने ए ब्राह्मण को बुला लिए। तो ब्राह्मण आए, आकर भगवान को बड़े अच्छे तरीके से आशीर्वाद प्रदान किए। तत्कालीन समय में एक विधि व्यवस्था था कि ब्राह्मण अगर आपका घर में आए, आजकल तो ब्राह्मण ऐसा हो जाता है कि अगर आपने फोन में भी बुला दिए तो ब्राह्मण भाग जाते हैं तुरंत, अगर आपने 8 बजे बुलाए तो 6 बजे पहुंच जाते हैं। इसमें लिखा है प्रभुपाद जी तात्पर्य में सीधा एकदम, प्रभुपाद जी डायरेक्ट डायरेक्ट हिट एकदम, जिसको कहते हैं कि इसके लिए कभी कभी जब प्रभुपाद जी कल आदि को भी बता रहे थे कि जब अमेरिका में गए प्रभुपाद, तब प्रभुपाद ने बहुत सारे अमेरिकन लड़का को उन्होंने जेनुई डाल दिए, जेनुई ब्राह्मण बनाए, तो वही कोई पूछने लगे कि दूसरा संप्रदाय वाले इवन नॉट ओनली फॉर दैट से प्रभुपाद जी का अपना गुरु भाई भी बहुत जिन्होंने प्रभुपाद जी को क्रिटिसाइज किए थे कि देखो ये क्या कर रहे हैं, अभी जाकर विदेश में म्लेच्छ व्यक्ति को जाकर ये प्रभुपाद ने जाकर उनको ब्राह्मण बना रहे। तो प्रभुपाद जी ने बताया आई डोंट बॉदर अबाउट दैट, मेरे को इसमें कोई नहीं है, क्योंकि मैं जिस कारण के लिए मैंने इतना उम्र में इधर आया, आई वॉन्ट टू मेक माई सक्सेस, मेरे को ये सफल होना है। अपना गुरु का वार्ता को लेकर उन्होंने पूछ गए थे अमेरिका में जाकर, और इतने सारे विदेशियों को जाकर उन्होंने ब्राह्मणिकल कल्चर में रप्त करा दिए, उन्होंने दे बिकम एडेप्टेड अवर द ब्राह्मणिकल कल्चर। तो इसी तरीका से उन्होंने ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण मतलब ये नहीं है कि 2 रुपये का जन्म डाल दिए हो, जो आज हल फचल दुनिया में सबसे ज्यादा चलते रहते हैं। तो लेकिन प्रभुपाद जी ब्राह्मण मैंने कि रूप गुण कार्यशिला धर्मशिला कहो, मतलब धर्म का ऊपर ब्राह्मण का कार्यकारिता क्या, व्हाट इज दैट एक्टिविटी, दे शुड नो अबाउट दैट। वो लोग को पता होना चाहिए कि ब्राह्मण का कल्चर क्या होता है, जिसके लिए प्रभुपाद ने विदेश में जाकर भी इतने सारे भक्त को उन्होंने ब्राह्मण बनाया। तो नंदा महाराज ने इसके कारण सब ब्राह्मण को बुला लिए थे कि ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, आकर अपना बच्चा को आशीर्वाद प्रदान किए, अपना बच्चा को लेकर आए तो अच्छे तरीका से उनको आशीर्वाद प्रदान कराए। तो जशोदा माँ ने देख ली कि अपना बच्चा है, अभी चलो ब्राह्मण लोग ने आकर उनको आशीर्वाद किया, अभी ब्राह्मण तो घर में आए उनको भी देखभाल करना भी मेरा कर्तव्य होता है। तो जशोदा माता गई उनको बच्चा सब ब्राह्मण को देखभाल करने के लिए उनको अच्छे तरीके से दान बागड़े कर दी। और बच्चा ने सोच ली कि बच्चे को पता हो गए कि एक असुर आकर मेरे को निधन करने के लिए आ रहा है, क्योंकि भगवान है उनको सब पता है, ये कोई आ रहा है मेरे को मरने के लिए, लेकिन मैं मेरा माता का कुल में गोद में अगर रहूं तो उसको देखकर मेरा माता हो भी सकता कि कुलुषित ना हो जाए, वो अगर कुलुषित हो जाए तो मेरे लिए वो अच्छा नहीं है। इसके लिए उन्होंने ये लीला विलास को दिखाने के लिए, मतलब जैसा बच्चा खेलते रहते हैं ना उसी तरीका से लीला विलास को दिखाने के लिए बच्चा ने अपना माता का कुल से आ गए बाहर, और जशोदा माता ने रख दी उसको सपट का नीचे। विष्णु चक्रवर्ती बाद इसमें वर्णन की कि इसके लिए भगवान ने ये कार्य की कि भगवान नहीं चाहते थे कि अपना माता भी कलुषित हो जाए उनको दर्शन करने से। माता का गोद में जब बच्चा रहती है ना माता का बड़ा आनंद मिलता है, बच्चे को बड़ा प्यार करते करके दूध पिलाते पिलाते सुला देती है, और जब बच्चा सो जाती है बच्चे को और एकदम अगर भय ना लगे डर ना लगे इसके कारण बच्चे के साथ माता भी सो जाती है साथ में। जब तक माता साथ में रहती है तो बच्चा सोचता है कि मैं एकदम फुल प्रोटेक्टेड हूं, मतलब मेरे को कोई भी कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये बाल गोपाल रूपी भगवान इन्होंने सोच लिए कि अगर मेरा माता के साथ में रहूं तो उसी पकड़ दुष असुर को देखकर मेरा माता कुलुषित, डरने का कारण नहीं है। विष्णु चक्रवर्ती बाद इसमें वर्णन की कि डरने का सवाल नहीं था, सवाल यही था कि मेरा माता कुलुषित ना हो जाए। शी कैनॉट बी पोल्यूटेड, उनको कुलुषित नहीं करना है मेरे को। जिसके लिए उन्होंने पूरा ब्रह्मांड का भार अपना शरीर में ले लिया, जो कि जशोदा माता के लिए वहन करना धारण करना मुश्किल हो रहा था। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया कि उन्होंने पूरा ब्रह्मांड का भार क्यों ले लिया। कल आदि को भी बता रहे थे विस्तृत रूप से इसको कि ब्रह्मांड का भार उन्होंने इसके लिए लिया था कि वो नहीं चाहते थे कि अपना माता बात्सल्य प्रेम का कारण, जिस तरीके से माता अपना बच्चे को प्यार करते हैं बचपना में उसी तरीके से बच्चा भी माता को प्यार करते है। बच्चा जब रोती है माता को पता हो जाती है कि इसके रोने का कारण क्या है, इसको अभी दूध पिलाना है इसके लिए बच्चा रोती है, और बच्चा दूध पीते पीते अपना माता का स्तन का दूध पीते पीते बच्चा सो जाती है एकदम। जब बच्चा सो जाती है माता सोचते है कि देखो मेरा बच्चा सो गए, चलो मैं भी इनके साथ थोड़ा सो जाता हूँ। सिर्फ आपने मतलब इसमें वर्णन की है कि अपना विश्राम के लिए नहीं, अपना रेस्ट करने के लिए नहीं माता सोती है बच्चा के साथ। बच्चा के साथ माता सोने का कारण यही है कि बच्चे को फुल प्रोटेक्शन देना है, और बच्चा भी देख लेते कि मेरा माता मेरा साथ है। जब बच्चा एकदम छोटे उम्र का रहता है ना, जब बच्चे को अचानक नींद टूट जाती है तो बच्चा रोते हैं। अगर वही इसी बच्चे को अगर कोई दूसरा व्यक्ति आके पकड़ ले, यह वास्तविक भी आप भी देख सकते हो, छोटे बच्चा जब सोने के बाद तुरंत उसको जग जाती है, जगने के बाद वो रोना चालू कर देते हैं, और रोने का समय अगर दूसरा कोई आकर उसी बच्चे को पकड़ के रखे ना तो बच्चा और रोना चालू कर देते, तो बच्चे को डर लगते हैं। लेकिन अपना माता आकर अगर कोल में रख दे ना, अपना गोद में रख दे, तो बच्चा एकदम फुल प्रोटेक्शन, बच्चा लेते चलो मैंने अपनी जगह में मैंने, ये वास्तविक में भी आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल उदाहरण है इसका। तो इसके लिए जशोदा माता सोच रही थी कि मेरा बच्चा मेरे साथ ही रहे, तो लेकिन भगवान ने क्या सोचा कि ये वो एक असुर आए, ये असुर को अगर मेरा माता तो शुद्ध है, विशुद्ध चित्ता रमोनी तब, भक्ति ने ठाकुर इस वर्णन में की है कि विशुद्ध चित्ता रमोनी तब, मतलब वो विशुद्ध है एकदम, उसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, कुछ भी पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए उस पर हृदय में, जिसके कारण भगवान ने सोच लिया कि मेरे को कोई योजना बनानी है अलग तरीका से। कौन सा तरीका से योजना है कि पूरा ब्रह्मांड का भार, पूरा ब्रह्मांड का जो भार है मैंने अपना शरीर में ले लेता हूं, और इतने भार ले मैं ले लूंगा कि मेरा माता मेरे को गोद में रख नहीं सकती है कभी। तब उनको रखने के लिए दूसरा एक जगह ढूंढना पड़े, दूसरा जगह में जाकर मैंने जब असुर आए तो असुर को मैंने कुछ कर दूंगा। भगवान के लिए एक सेकेंड का खेल है ये सिर्फ, इसके लिए उन्होंने योजना बनाई कि उनको नहीं चाहते थे। विष्णु चक्रवर्ती बहुत ही अच्छे तरीके से इसका वर्णन भी किए है, भक्ति चंद सरस्वती ठाकुर भी इसके ऊपर बहुत ही सुंदर टिप्पणी बताए कि भगवान चाहते थे कि जसोदा माता इसी तरीके से पॉल्यूटेड ना हो जाए, दूषित ना हो जाए, इसके लिए भगवान ने पूरा ब्रह्मांड का भार अपना शरीर में ले ली, और उसी भार का कारण जसोदा माता सोचने लगी मेरा बच्चा इतना वेट हो गया, इतना ज्यादा वजन बढ़ गए उनको कि मेरे द्वारा संभव नहीं है, मैं दूसरे जगह में मैं इसको रख देता हूं। तो देखिए इसको कहते हैं कि माता तथा पुत्र का प्रेम, जैसे मैं पहले बताया किसी लोग बाबाजी तात्पर्य में विश्लेषण भी किए है कि गर्भधारण, गर्भधारण संस्कार में जब गर्भधारण संस्कार चलते हैं तो माता का सब नहीं पूरा परिवार में आनंद ही आनंद मिलते रहते हैं। लेकिन आजकल गर्भधारण नहीं है, गर्भपात हो गए ज्यादा, जिसके लिए जीवन में दुख ही दुख आ जाती है सबको परिवार में। तो इस तरीका से जसोदा माता के द्वारा पूरा बच्चा एकदम फुल सिक्योर्ड हो गए थे निश्चित रूप से एकदम। तो भगवान देखा कि चलो अभी तो मेरे को कुछ खेल खेलना है किसी के साथ, तो आ गए ने एक असुर ने, तो असुर को किस तरीके से खेल खेलना है आगे चले हम लोग पढ़ेंगे। तो उसका ऊपर पोपा जी से विश्लेषण भी किए हैं कि इसको कहते हैं कि अष्ट लीला, भक्ति विनोद ठाकुर इसका वर्णन किए कि अष्ट अष्टकालीय लीला, ये जो तीनावर्तासुर वध पुतना वध इसको कहते कि अष्टकालीय लीला। ये अष्टकालीय लीला भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन किए कि अष्टकालीय लीला का अर्थ होता है, पहला लीला का नाम है निशांत लीला, बहुत ही सुंदर से भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद वाणी वैभव बोल के ग्रंथ है जिसमें उन्होंने विस्तारित रूप से इसका वर्णन किया कि अष्टकालीय लीला किसको कहते हैं। पहला लीला का जो नाम है उसका नाम है निशांत लीला, दूसरे लीला का नाम वर्णन किया है प्रातल लीला, तीसरा लीला का नाम है पूर्वान्न लीला, चौथा लीला का नाम है मध्यान्न लीला, पांचवा लीला का नाम है अपराह्न लीला, छठवा लीला का नाम है सायं लीला, मतलब सांध्यकालीन जो लीला होती है उसको कहते हैं कि सायं लीला, और सातवा लीला का नाम लिखे है प्रोदोष लीला, आठवां लीला का नाम लिखा है निशा लीला, मतलब गोभीर रात में जो भगवान ने लीला किए उसको कहते हैं निशा लीला। विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर अष्टकालीय लीला को व्याख्या भी किए, नारद मुनि संवाद में इसमें वर्णन भी किए कि नारद मुनि किस तरीके से प्रोदोष लीला निशा लीला अष्टकालीय लीला को व्याख्या है, और भक्ति विनोद ठाकुर विस्तारित रूप से इसका वर्णन भी किए है। उसमें श्री प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर का इस टिप्पणी का ऊपर एक तात्पर्य जो लिखे जिसमें उन्होंने वर्णन किए कि सिर्फ भक्त को गौड़ी और वैष्णव समाज का भक्त को भगवान का जो निशा लीला है इसे निशा लीला को अध्ययन करने का मौका नहीं दिए है। क्यों नहीं दिए ना, निशा लीला भगवान का जो है ये है गुज्झ लीला, जिस गुज्झ लीला इस कली युग में इसी दिमाग में इसी बुद्धि में हम लोग इसको हजम नहीं कर रहे। सीधा प्रभुपाद जी ने लिखे कि इस निशा लीला को हजम करने के लिए जो शक्ति होना चाहिए, जिसल ए लीला को अध्ययन करना और इसी लीला को अच्छे तरीके से ग्रहण करने के लिए जिस तरीके से शक्ति जिस तरीके से ताकत होना चाहिए उस तरीके से ताकत आज का दिन में भक्त समाज को नहीं है। जिसके लिए प्रभुपाद जी कभी भी कहां पे भी निशा लीला का वर्णन नहीं किया है। निशा लीला का वर्णन कहां पे भी प्रभुपाद जी भी नहीं किया है, भक्ति विनोद ठाकुर भी नहीं, भक्ति शांत सरस्वती ठाकुर भी नहीं, लेकिन आठ प्रकार लीला का वर्णन किया है भक्ति विनोद ठाकुर, आठ प्रकार लीला का नाम उल्लेख किए लेकिन निशा लीला का वर्णन नहीं किया। और ये जो तीनावर्तासुर वध शकटासुर वध जो लीला, इसको कहते कि प्रायंग लीला। इस प्रायंग लीला का अर्थ होता है कि जिस लीला के द्वारा व्यक्ति अपना जीवन का अंदर अपना कान के माध्यम से जाओ और लीला को श्रवण करते है। कोई भी व्यक्ति जितने भी पाखंडी व्यक्ति अगर श्रवण भी कर लिए, पापी व्यक्ति भी अगर श्रवण करे इसको, इस प्रायंग लीला का माध्यम से, इसको कहते हैं कि तीनावर्तासुर तथा शकट भंजन लीला, इसको कहते हैं कि प्रायंग लीला। प्रायंग लीला तब आदित समान, भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन किए भक्ति विनोद वाणी कोई भाव में, प्रायंग लीला तब आदित समान, मतलब इसका अर्थ होता है कि इस लीला को अगर कोई व्यक्ति ध्यान से अध्ययन करे, जितने भी पापी व्यक्ति हो, पापी व्यक्ति की अगर ध्यान से अध्ययन करे तो हृदय तथा चित्त सुधार सकते हैं, हृदय तथा चित्त को सुधार सकते हैं। तो भक्ति शांत सरस्वती ठाकुर एक बार गए थे एक जगह में, उड़ीसा में एक जगह में प्रवचन करने के लिए, इसी कार्तिक महीना में। तो कार्तिक महीने में जब भक्ति शांत सरस्वती ठाकुर गए तो इस प्रायंग लीला का वर्णन करते, प्रायंग शब्द का अर्थ क्या है, लगातार तीन दिन उड़ीसा में भक्ति शांत सरस्वती ठाकुर लगातार तीन दिन तक इस प्रायंग लीला का अर्थ व्याख्या की, जो कि भक्ति विनोद ठाकुर के एक ग्रंथ है जिसका नाम है चैतन्य शिक्षा, उसमें विस्तारित रूप से इसका वर्णन भी किया है कि प्रायंग लीला का अर्थ क्या होता है। प्रायंग लीला का अर्थ बताए, जिस लीला को अध्ययन करने में, जिस लीला को श्रवण करने में व्यक्ति अपना हृदय को चित्त शुद्धिकरण हो जाते हैं, उसको पापी व्यक्ति भी अगर आए तो थोड़ा समय के लिए भी अगर इसी प्रायंग लीला को श्रवण करे, जिस प्रायंग लीला का अंदर में ये तीनावर्तासुर तथा शकट भंजन लीला आ जाती है, पापी व्यक्ति भी अगर श्रवण करे तो इसी पापी व्यक्ति को हृदय चित्त शुद्धिकरण होता है। चूतो तब हृदय हृदितम, चूतो तब हृदय हृदितम, भक्ति विनोद ठाकुर ने व्याख्या की, मतलब हृदय हृदितम का अर्थ था हृदय का शुद्धिकरण, हृदय हृदितम, हृदय का शुद्धिकरण होता है इसी तरीका से। तो विशेष रूप से कार्तिक महीने का हम लोग अंतिम पर्याय में आ गए एकदम, और थोड़ा दिन बाकी है, तो भाग्यशाली हम लोग की इसी कार्तिक महीने के भगवान का इसी तरीके से लीला शोभन करने का मौका हम लोग सबको मिले हैं, तो एक महीना तक ये चल भी रहा है। तो भक्ति शांत सरस्वती को मैं जिस बता रहा था कि उड़ीसा में जाकर भक्ति शांत सरस्वती ठाकुर इस प्रायंग शब्द का ऊपर लगातार तीन दिन तक व्याख्या की थी, तीन दिन तक प्रायंग लीला का ऊपर वर्णन की। फिर भी तीसरा दिन में जब एकदम अंतिम पर्याय में आ गए थे इसके प्रायंग लीला को, जब उन्होंने तीनावर्तासुर शकट भंजन लीला पुतना वध रेणुकासुर वध एक से एक लीला को उन्होंने वर्णन करना चालू की प्रायंग के साथ साथ, और इसके साथ उन्होंने अनर्थल निर्वृत्ति भी वर्णन की थी, लेकिन बहुत सारे स्मार्त ब्राह्मण जिसको कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते कि ध्वजाधारी ब्राह्मणों उदय होइलो आज, मतलब ध्वजाधारी ब्राह्मण किसको कहते हैं, जिन्होंने ये 2 रुपया का जेनुई बाजार से खरीद करके लेकर आए, आपने गले में डाल दिया, प्रभुपाद जी इसको कहते हैं कि ध्वजाधारी ब्राह्मण। इसी ध्वजाधारी ब्राह्मण बहुत सारे बैठे थे उसी कार्यक्रम में। तब भक्ति शांत सरस्वती ठाकुर जब तीसरा दिन हो गए एकदम अनुष्ठान समाप्त होने का समय पहुंच गए थे, तब भक्ति विनोद ठाकुर सबको पूछने लगे, ये जो तीन दिन तक मैंने प्रायंग लीला का ऊपर वर्णन किए, इसमें से कौन कौन व्यक्ति है जिन्होंने पूरा समझ गए, और कौन कौन व्यक्ति जो कि आधा समझ गए, और कौन कौन व्यक्तियों की एकदम भी समझ नहीं पाए। तो जितने सारे स्मार्ट ब्राह्मण, मतलब ध्वजाधारी ब्राह्मण, प्रभुपाद जी का भाषा में ध्वजाधारी ब्राह्मण मतलब जिन्होंने 2 रुपया का जिन भी डालकर बैठे थे उधर, वो सब लोग ने एकदम 2 हाथ ऊंचा कर दिए कि स्वामी जी हम लोग ने बूझने हम लोग ने समझ नहीं पाए, वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, मतलब मेरे को समझ नहीं पाया कि आपने क्या बताया। तो भक्ति शांत सरस्वती ठाकुर बताए कि आपने समझ नहीं पाया का गलत आपका है, क्यों ना आपने जो गले में जो जेन्यू डाल दिए हो ये जेन्यू को सही तरीका से आपने उपयोग नहीं कर पाते हो, जिसके लिए आपने समझ नहीं पाए। तो सब लोग आश्चर्यचित हो गए सुनकर कि किस तरीके से ये साधु संत महात्मा लाल कपड़ा धारण करके सन्यासी होकर आए, इतना बड़ा डंडा लेकर आए साथ में और सबका सामने इसी तरीके से बता दिए। तस्मात् ब्राह्मण सब हो गए गुस्सा, गुस्सा में कहने लगे स्वामी जी आपको इसी तरीके से बोलना नहीं चाहिए। तो स्वामी जी उनको अच्छे तरीके से समझाए कि इस प्रायंग लीला ये लीला को समझने के लिए आपको पहले भगवान का ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर भगवान का ऊपर अगर आपको पूर्ण विश्वास नहीं है तो इस लीला को समझना आपके लिए मुश्किल है। भले भी आपने जिन्हें डाल दिए गले पे लेकिन आपका भगवान का ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं, कृष्णस्थ भगवान स्वयं ये शब्दों के ऊपर आपका विश्वास नहीं है, आपने बहुत सारी चीजों के ऊपर आपका विश्वास है लेकिन कृष्णस्थ भगवान स्वयं इसका ऊपर आपका विश्वास नहीं है। जब तक आपको कृष्णस्थ भगवान स्वयं इस शब्द के ऊपर आपका विश्वास नहीं होगा तब तक आप ये समझ नहीं पाओगे। तस्मात् ब्राह्मण ये ध्वजाधारी ब्राह्मण एकदम लज्जित हो गए थे। तो प्रभुपाद जी के चरण में आके पकड़ लिए भक्ति शांति सरस्वती के चरण आके पकड़ के कहने लगे आपने जो बताया ना आपने सही बताया, बोलते हम लोग ने इतना साल तक पूजा पाठ कर रहे लेकिन कृष्णस्थ भगवान स्वयं जो स्वयं कृष्ण स्वयं भगवान और भगवान होकर कुछ भी कर सकते हैं ये हम लोग समझ नहीं पाए, लेकिन भले भी पूजा पाठ कर रहे हैं तो इसके लिए आपको समझना मुश्किल हो रहा है। अगर पहले आपने ये सोच लो ये ध्यान से अध्ययन करो कृष्णस्थ भगवान स्वयं, जब आप कृष्णस्थ भगवान स्वयं ये अगर आपने समझ लिए तो आपको सब समझना एकदम ईजी हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौरपे वनंदे पंचाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
क्या नाम है? भावग्राही।
हरे कृष्णा। जो हर गुरुवार को हमारा इधर प्रभुपाद जी का प्रवचन के बाद प्रसाद होता है ये गुरुवार को नहीं हो पाया क्योंकि प्रभुपाद जी का तिरुभाव तिथि थी, जिसके लिए आज वो प्रसाद गुरुवार का प्रसाद आज हो रहा है सबके लिए। तो आज का जो प्रसाद है ये भावग्राही माता जी के द्वारा। तो भावग्राही माता जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
भावग्राही माता जी
मंदिर।